अस्त्र शस्त्र नहीं, ऊपर और नीचे नहीं, घर के बाहर भीतर नहीं, दहलीज पर, दरवाजे पर, और दहलीज के ऊपर में अपने आप बैठ गया। उसके ऊपर में जबरदस्ती पकड़ करके उसे यहां पर गिरा दिया और अपने नखों को लेकर के ऐसा दुबाया पेट में और एकदम बाघ की भांति, सिंह की भांति उसे फाड़ दिया और उसकी नाड़ी ताड़ी सब निकाल करके सब एकदम बाहर कर दिया और उसे एकदम गले में लगा दिया। क्रोध से थक्कर कांप रहे हैं ये तुम्हारा गाय मिनटों में, और उनकी जड़ों से आग निकलने, सारा विश्व भयभीत हो गया। देवता लोग आए थे, थर-थर कांपने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी से, अरे अब तो उनको शांत करो, अब तो हिरण्य कश्यप मारा गया, नहीं तो मैं आज नहीं जा सकती, आज मेरे बस की बात नहीं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी, जो आप तो उनके बड़े प्रिय हैं, आप थोड़ा सा जाकर के उनको शांत कीजिए। महा भय की बात, मैं नहीं जा सकता, आज जाने से मुझे भी ना जाने क्या कर डाली। शंकर जी नहीं गए, ब्रह्मा तो खुद गए ही नहीं। बच्चे को कहा ये बेटा प्रहलाद तेरे लिए आए हैं, आज जगत का धन कर देंगे, हिरण्यकश्यप तो तुम्हारा बाप तो मारा गया, अब संसार को ये दंड कर देंगे, जल्दी से जाकर के इनको शांत करो। प्रहलाद महाराज जी जैसे सिंह का बच्चा सिंह होता है ऐसा एकदम कुदकता हुआ गया और कूद करके उनकी गोदी में बैठ गया। बैठने से उनका क्रोध शांत शांत हो, जैसे आग ने पानी डाल दी जाए एकदम शांत हो गई और उनके आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। बोले जे बेटा मेरे आने में भी विलंब हो गया, मुझको बहुत पहले आना चाहिए था, मैं नहीं आता, इसलिए तुम क्षमा करो मुझे, मैं तुमको कुछ भर देना चाहता हूं, मेरा दर्शन अमोघ है, इसका फल जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए तुम कुछ बर मांगो। प्रहलाद महाराज जी निर्भीक रूप से छोटे बालक, उनको कोई डर भय नहीं, जैसे सिंह का बच्चा अपने सिंह की पीठ पर खेल रहा हो, उसकी गोदी में खेल रहे हैं। उन्होंने कहा जी पिताजी मैं तो बनिया नहीं, बनिया क्या करता है, कुछ लेता है सब कुछ देता है, पांच रुपये की चीज पांच रुपया दे दो तो खटिया किस्म का दो रुपये का ही माल देगा और उसमें भी तौलेगा, उस चौक तौलने में भी डंडी मारता है, वो अपनी मैया को भी नहीं छोड़ता, मैं तो धनी नहीं हो सकता, इसलिए मैं बनिया नहीं हूं, मैंने आपका भजन बनिया गिरी के लिए कुछ लेने के लिए नहीं कहा, इसलिए हमारे अंदर में यदि कुछ मांगने की इच्छा हो आप कृपा करके इसको दूर कीजिए, मैं सदा के लिए आपकी सेवा करता हूं। अच्छा बेटा तो भी मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर में मांगने की कुछ इच्छा नहीं है, तो भी तो कुछ मांग। मैंने कहा अच्छा यदि आप देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए, हमारे पिताजी ने आपके चरण में बहुत अपराध किया, बहुत भक्तों को सताया, भक्ति का निरादर किया, इसलिए आप कृपा करके इनको क्षमा करके कुछ गति दे। उन्होंने बेटा जिस कुल में तुम्हारे जैसे वैष्णव का जन्म होता है 21 पीढ़ी के लोग बिना भजन किए भी सर जाते हैं, जो लोग साधारण रूप से मध्यम श्रेणी के वैष्णव हैं जो अभी साधन भजन कर रहे हैं उन वे लोग का 14 कुल के ऊपर नीचे के माता पिता सबका उद्धार हो जाता है और जिन्होंने अभी साधन भजन करना आरंभ किया है जैसे अशुभ बालक हैं साधारण रूप में वो जब ये आरंभ किया साधन उनके 7 कुल पीढ़ी के माता पिता सबका उद्धार हो जाता है। इसे मैंने को तुम्हारे पिताजी का तो पहले ही उद्धार कर दिया है, तुम फिर भी कुछ मांगो, फिर भी मुझे यदि मांगना है तो ये मांगिए, मांगता हूं आपको भूल करके भगवान को भूल करके सारे जीव दुखी में जीतने हैं, ये दुख भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसलिए हमारा यदि कुछ पुण्य है मैंने भजन किया है तो हमारा पुण्य लेकर के इनको देकर के इन सबका उद्धार करते हैं और मैं इन लोगों का सारा पाप लेकर के कोटि कोटि जन्म तक मैं इस संसार में आता जाता रहूंगा और दुख करूंगा। भगवान के आंसू से फिर आंसू आ गए, बोले से बेटा मैं तुम्हारा ऋणी, तुम्हारे ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता, इसलिए जो लोग तुम्हारी और हमारी इस गाथा को सुनेंगे और कहेंगे और भगवान का नाम करेंगे, उन सबको इस संसार से जरूर मुक्ति देकर के उनको चरण अपने चरण में भक्ति दे दूंगा। इसमें कोई भी संदेश की बात नहीं है, कोई भी भूल नहीं है, कोई शंका न करे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। इसलिए आज इस कथा को जो सुन रहे हैं मन से और आज ही से भगवान का कुछ नाम करेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण प्रणाम महाराज का चित्त स्मरण से निश्चित रूप में गारंटी के साथ में जरूर उनको सम्मान कृपा करके अपने वचन की रक्षा करेंगे प्रतिज्ञा, अन्यथा वो प्रतिज्ञा भूमि के दोषी होंगे, भगवान प्रतिज्ञा करके उसको दूर नहीं करते। इसलिए आप लोग भी ऐसे ही समझिए। अब मैं ये बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने कितने भगवान का मैंने दिखलाया, भक्तों के वजह से उन्होंने दर्शन दिए। भगवान का दर्शन इतना कठिन नहीं है, इसलिए भगवान का रूप है, किंतु साधन के द्वारा मिलते हैं, साधन के द्वारा मिलते हैं। वो साधन क्या है? अन्ना मिला पिता सुनम ज्ञान कर्मा देनाम आनुकूल्य कृष्ण भक्ति अन्ना विदासम ज्ञान कर्मा जनावृतम कौन सावधानी से सुनेंगे पालन करने की चेष्टा है, यही संतों के समाज में होता है। बिन सत्संग न पाप निधान, बिना सत्संग के कोई पूजन नहीं होती, और उसमें संत लोग बिना किसी स्वार्थ के दया प्रकट होकर के ये उपदेश देते हैं। मैं भी आप लोगों से किसी चीज की आशा नहीं करता, इतने बड़े गुरु से इसे भाग से आया इसी बातों को सुनाने के लिए। जब इतने सुनाने में से एक आदमी भी हमारे प्रदेश को सुन करके उस पर चला उसका जीवन धन्य हो जाएगा, वो जीवन वरिष्ठ लोग को भी सार देगा, अपने को सारेगा, दूसरों को भी सार देगा। इसलिए संत लोग बिना किसी फल संत के, बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी लाभ के ये सब चीजें बताने को हम लोग उन नहीं है। जो रामायण की कथा सुना करके प्रणाम का फल आरंभ देंगे, आपकी कथा करके पैसे देंगे, ये हम लोग आए हैं कुछ अपने भारतीय संस्कृति के विचारों को देने के लिए। आप लोग इसको ग्रहण करेंगे, रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहता, हम लोग कुछ भी इतने लोग जो आए हैं ये भी रिटर्न में कुछ नहीं चाहते। इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ ध्यान से, और इसी में आप लोगों का कल्याण है। ज्ञान का जनावतम अंत ले जितने भगवान को प्रीति हो, ऐसी भगवान की तन से मन से वचन से धन से और भावनाओं से एकांतिक रूप से प्रभु पूजा हम सेवा करें, तन से सेवा, मन से सेवा, वाणी से सेवा, उनका गुणानुवाद कीर्तन करना, कानों से सेवा, उनकी कथाओं का श्रवण करना, शरीर से उनको प्रणाम करना, उनके भक्तों का प्रणाम करना, हाथों से उनका अर्चन करना, पैरों से उनके पीठों में जाना, ये सब भगवान की सेवा है। तन से मन से वचन से और भावनाओं से सब प्रकार की भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितनी भी चेष्टाएं हैं इस चेष्टाओं को भक्ति कहते हैं। किंतु उसमें दोष का अभाव है, उसमें किसी प्रकार की सांसारिक कामना नहीं होनी चाहिए, कोई भी कामना न हो, सब प्रभु पर छोड़ दो, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए छोड़ दो, और वो सारी चेष्टाएं ज्ञान कर्म जो तपस्या व्रत होम स्वाध्याय इत्यादि के द्वारा साबित हो, भक्ति स्वतंत्र अवलंबना आना, भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान और कर्म के द्वारा हो जाएगा, ज्ञान के द्वारा हम भक्ति कर लेंगे, ज्ञान में ये भगवत तत्व हो ये असंभव, कर्मों के द्वारा भगवान को जानने असंभव है, इनके द्वारा भक्ति हत्या नहीं। कैसे? हम आपको एक उदाहरण के द्वारा सहज रूप में उदगम रूप में आप लोगों को समझाने की कैसे। महाराज दशरथ राम 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 कह करके सांस त्याग देते हैं। पहले को उन्होंने बल दिया था कि तुम्हें दो बार दूंगा तुम मांग लो, उसने बल मांगा यही। रामचंद्र जी का जो आज अभिषेक होने जा रहा है उनको राज्य की राजगद्दी दी जा रही है, उनको तिलक राज के धातु का दिया जा रहा है, वो बंधो भरत राजगद्दी पर ये राज्य भरत राजगद्दी पर बैठेगा यह पहला। और बारह के लिए रामचंद्र जी का परिवार 14 वर्ष के लिए उनका अपना दो बार, पहली बात है रामचंद्र जी भरत जी अयोध्या के पृथ्वी के राजा आज के लक्ष्य दिया गया राम के बदले, और रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए बलवास की। ये नहीं कहा कि 14 वर्ष के बाद में रामचंद्र जी लौट आएंगे इसके बाद में राजा हो जाएंगे, नहीं, भरतपुर राज्य और रामचंद्र जी 14 वर्ष तक बाहर रहेंगे इसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा, फिर आएंगे भी तो उनको दिखेगा फिर उनको राज्य तो मिलेगा नहीं, इसलिए ये दो वर्णा महाराज रामचंद्र जी को बुलाया, कह नहीं सके कह कहीं नहीं ये कहा तुम्हारे पिताजी ये चाहते हैं कि तुम 14 वर्ष के लिए बन रहे बनने जाओ और हर बार यहां पर राजगद्दी मिले। रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महाराज का सबको प्रणाम किया और सीता जी लक्ष्मण जी को लेकर के मैं संक्षेप में बतला रहा हूं। इधर रामचंद्र जी जब सीता और लक्ष्मण को लेकर के निकले और सिंहरेपुर में पहुंचे, रात में उनकी सारी प्रजाएं और सब लोग उनके पीछे पीछे गए, अयोध्या प्राय सुनी महाराज दशरथ हाराम हाराम और हार राम मन कर रहे प्राण निकल रहे, चारों तरफ में लोग रोने लगते हैं। और यह संवाद धर्म को और सप्तम में जो निहाल में निर्णय दिया गया और वहां के बड़े तेज धूप पर रथ के सहारे वो आए, अयोध्या को उन्होंने देखा जैसी हुआ जैसी उनके आगमन के लिए स्वागत के लिए कोई नहीं आया। जब वहां से भीतर में पहुंचे देखा गधे रो रहे हैं सिदार रो रहे हैं चारों तरफ में अक्सुर हो रहे हैं, क्या मामला कैसी नहीं? जब रात जब गए तो देखा जैसे ये तो मेरी मैया के पास में महाराज दशरथ रहते थे जरा वहां पर जाए पिताजी से तो भेंट करूं ना, तो वहां गए कई कई थी वहां पर मंथरा के साथ में खड़ी थी, देखा कि इनके तीर में सिंदूर नहीं है, मैया पिताजी कहा तो पिताजी का पर लोग सिधाए क्यों सब कुछ तेरे लिए बेटा मैंने तेरे ये राज्य मांगा और राम को राम कहा है लक्ष्मण वो तो बनवास में गए क्यों मैंने यही बार माना तुम्हारा राज्य निष्कंटक होने के 14 वर्ष तक वो नहीं बने वो से नहीं बन गए और उनके लोग ने हार आम करते ही ये मारे गए। अच्छा तो कुछ मेरी मैया नहीं है आज रामचंद्र हमारे पर क्रोधित नहीं होते तो मैं तुम्हें आज मैं काट देता तुम्हारा पद कर देगा आज से तुम्हारा मैया और हमारा पुत्र इन दोनों का संबंध दिखते हुआ अब भविष्य में मैं तुम्हारी मैया नहीं ले गई मैं तुम्हारा बेटा नहीं रहा। तुमने राम के प्रति ऐसा व्यवहार किया मुझे महाराज पिताजी के लिए दुख नहीं तुम विधवा हो गई इसके लिए भी दुख नहीं पिता के लिए दुख नहीं तुमने भैया को राम को जैसे खाई और उसको तुमने बंद लिया अच्छा ठीक अब से तुम्हारा इतने में मंत्रा आई और कहे चलो तुम्हारे लिए राजसिंहासन है क्या राजसिंहासन है इतने सप्तमी जी ने उसके सुगरों का ऐसी लात मारी कि वो मरने वाली थी चिल्लाने लगी रक्षा करो रक्षा करो तब किसी प्रकार से भरत जी ने उसकी रक्षा। इसके बाद में कौशल्या के घर गए बड़े हुए थे दूसरे दिन उन्होंने घोषणा की मैं आज ही महाराज दर्शित और सारी सेनाओं और मंत्रियों के साथ में ब्राह्मणों के साथ में मैं किसी रूप में आऊंगा, यहाँ मेरे भैया हैं और उनको मना करके नहीं आऊंगा, उनको राज्य गर्मी पर बैठा करके मैं उसी के बाद ये कर सकते सबको लेकर के चित्रकूट में चले। कैसे चित्रकूट में चले, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है और हमारे आदि वाल्मीकि जी ने कवि ने जो समस्त गुरुओं के गुरु हैं जो तुलसीदास के भी गुरु हैं उन्होंने वर्णन किया है बाद में मां भी गुरु। मैं समझता था कि तुलसीदास जी बड़े कोमल स्वभाव के हैं, मैं देखता हूं तुलसीदास जी बड़े कठोर भी रहते थे, क्यों जिनका आराम से समान पढ़ करके कभी रोते हैं उनकी कल कैसे स्थिर रही होगी, कैसे उन्होंने रामचरित को लिखा खुद लिखा प्रेम में चल रहे होंगे तो उनकी कल कैसे चलती होगी जिसके पढ़ने से सारे दूसरे से दूर होते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि नदी कैसे उनका कठोर है ना कोमल, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं तो एक दो उपाय पढ़ करके भी स्थिर नहीं कर पा। जब वहां पर गए इसका वर्णन उन्होंने दिया बड़े मार्गी दूसरे एक बार दो हृदय भी पदक भी मिल जाएगा चित्रकूट जी को कह देंगे कौशल्या जी के साथ दीदी बहन भक्त मुझे मैया माता नहीं और उनके लिए नहीं जाएगा सामने के लिए अपने साथ बहन को बड़ी दयालु है तुम हमारे साथ में अपने साथ में हमें ले लो, मैं राम को कह करके अपनी जो बल मंगा है मैं लौटा लूंगी और उसको ले आ करके इन्हें बढ़ा के दिलाऊंगी, इसे मुझे भी साथ ले कौशल्या ने उसको भी साथ ले लिया। कई गई समस्या और देर भी गई बाल विश्वे वशिष्ठ जी गए विश्वामित्र को बुला दिया गया और बड़े बड़े ऋषि महर्षि वामदेव इत्यादि सभी उनकी चक्र में ही सेना से उतर के चली और कहते जब चित्रकूट में पहुंची लक्ष्मण जी को देख करके उन्हें जब घर पर आया है हमें मारने के लिए राम को मारकर मारने के लिए अच्छा तो मैं आज भरत को भी मारूंगा शत्रुघ्न को भी मारूंगा और प्रभु को धन कर दूंगा और यह करके राम भैया को वहां पर बैठाऊंगा, आज लोग मैं शिव की साक्षी और भैया की साक्षी देकर बताता हूं मैं जरूर जीतना आज सारी पृथ्वी देखे राम जी महाराज देखो तुम चिंता मत करो भक्त के समान पृथ्वी में कोई दूसरा नहीं हो तन भव तव भाव भाव सको, यदि पृथ्वी में भक्त का प्रेम का भाव अगर जगत में नहीं होता तो पृथ्वी क्यों चल जाता, इसलिए तुम थोड़ी सी प्रतीक्षा करो आने से तुम ऐसा करोगे पीछे बचताओगे, तुम थोड़ा सा धैर्य धारण करके रहो देखो तो क्या होता है। भरत जी वहां पर आए राम के चरणों में दक्षु की खाती गिर गए और रोने लगे, रामचंद्र ने उनके गले लगा दिया, उस समय उनका जो मिलन हुआ उसको देख करके पत्थर भी निकल जाएगा, सारे लोग रो रहे हैं राम भी रो रहे हैं भरत भी रो रहे हैं, किसी प्रकार से सबको शांत किया। भरत जी कुछ कह नहीं सकते प्रेम में पगे हुए भैया तुमको लौट जाने भी भूल गए, राम ने भी ये पूछा कि किसलिए तुम आए ये भी भूल गए, किसी प्रकार से वो भी जीत गया। उनको पता लगा राम को कि महाराज दर्शक मेरा नाम करते हुए पिताजी पर लोग खिला है, दूसरे दिन उनको इमली का चूर्ण बना करके आटा उसका पिंड बना करके वहां पर वहां पर नदी है चित्रकूट में उस चित्रकूट से नदी में उन्होंने उनको संस्कार कराया और पिंड दान किया। इसके बाद में उस दिन भी किसी का भोजन नहीं हुआ उपवास रहे, आज का ही बात उन्होंने सुना था सब लोग उपवास रहे, दूसरे दिन भी स्नान स्नान करने के बाद में सब लोग बैठे हुए थे, इतने सुना कि महाराज जनक जी आ गए बड़ी प्रसन्नता हुई सबको, अब तो सभी लोग मिल करके राम को लौटा ले जाएंगे इसमें कोई संदेह की बात। रात में सब लोगों ने विश्राम किया, महाराज भरत की तृतीय दिन रात भर नींद नहीं आई, कैसे भैया को ले जाऊं कैसे इनको राज्य पर बैठाऊं, इसे सोच रहे हैं पहले गुरु जी के पास जाऊं
गुरु जी की आज्ञा को टाल नहीं करते आप। इसलिए यदि गुरु जी कहते हैं तो जरूर ही वो लौट जाए। और दूसरी बात, मैया कौशल्या है, इनके पास भी जाऊंगा और ये आदेश दे देगी। मैया तो वो कभी भी टाल नहीं करती। और तीसरे कौन व्यक्ति हैं? महाराज जनक उनके ससुर और पिता हैं, महाराज जनक के दशरथ के समान। उनकी आज्ञा का यदि विरोध नहीं कर सकते। आज बड़ी बात सब ठीक हुई है। मैं आदमियों के चरण में जाकर के मैं निवेदन करूंगा जो राम को आ गए थे, जो लौट गए सीता जैसी कुमारांगी, और ये बिना झूठी के और कहां कहां घूमने या राजकुमारी खाली पैरों में, और ये राम सन्यासी का बेटी नाम करके और खाते क्या है, कोई फल मूल मिल जाए तो खा लिया, नहीं तो आस रहे। और पहाड़ियों पर जिस पर हम लोग नहीं चल सकते, हम विंध्याचल और उधर की पहाड़ियों में गए, हम लोग जूता पहन करके भी नहीं चल सकते। बिच्छू और जानवर सांप इत्यादि भरे पड़े, बड़े नमीले नमीले पत्थर, और उसमें खाली पैर चल रहे हैं, सुन करके हृदय काम पर गए। रात भर सोचते रहे ऐसा करूंगा ऐसे नहीं करूंगा। दूसरे दिन सवेरे नदी में स्नान किया और स्नान करने के बाद फिर राम के पास में गए, किंतु कोई बात बनी नहीं। रात में भी आज गए गुरु जी के पास। गुरु जी हमारा ये निवेदन है कि अयोध्या के लिए, कुछ बातों के लिए, जगत के हित के लिए, मेरे हित के लिए, हमारी माताओं के हित के लिए आप राम को आदेश दे दीजिए जो अयोध्या में लौट करके राम की नाशन हो गए। मेरे बात को समय नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं कि राम सीता लक्ष्मण के साथ में लौट गए। मैं तो चाहता हूं, सिर्फ बात क्या कह रहे हैं। तुम भी जैसे ट्रेनिंग हो राम के भक्त हो, राम जी धर्म पुरंदर है, उनको सबसे से ठिकाना करने नहीं है। महाराज दशरथ ने ऐसा कहा है, पिता का आज्ञा पालन करना छोड़ करके वो शरीर ले जाए। तब एक बात है, यदि सर्वत्र कहीं जा रहा हो तो आपके को भी यदि लेकर के संतुष्ट कर जाए तो बात की। जैसे यहां हमारे 1,01,00,000 रुपए की खरीद हो रही है तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, 50,000 में ही संतुष्ट होगा क्या? अच्छा 50,000 तो हाथ में आया, उसके लिए ही चल जाए। तुम एक बात करो, तुम राम के चरणों में ऐसा कहो कि भैया जी आपके बदले में हम और शत्रुघ्न भी जा रहे हैं बनने पिताजी का आदेश मानो, और आप पिता और लक्ष्मण जी जो करते आप लौट जाइए और ये तिलक करने के लिए राम की मांग सन के लिए सारा सामान हम ले आए हैं मंगल की बस में, तीर्थों का जल और सब जल जो आपके राजाभिषेक के लिए मंगाया गया था, सप्त कुंडियों से कहां कहां से समुद्र से वो सारा का सारा चीज मैं ले आया हूँ। ब्राह्मण भी आए हैं, वो सब आपका राज तिलक कर रहे हैं और आप अयोध्या का पालन कीजिए और हम और शत्रु भी आपके लिए। उन्होंने कहा बात तो बड़ी अच्छी है, फर्जी ठीक है, मैं राम से कहूंगा ऐसा। मैं तो ये कहूंगा यदि ये भी नहीं मानते तो लक्ष्मण जी के बदले मैं उनके साथ में रहूं, हमको लेकर के और लक्ष्मण जी को पिताजी को लौटा। यदि ये भी नहीं मानते हैं तो हम हर लक्ष्मण अस्त्र नदियों बन को जाते हैं और सीता जी को लेकर जाओ, हम इसमें भी जाते हैं किंतु किसी प्रकार से राम। अच्छा सफल ये बात देखी जाएगी, आप नहीं कहीं आदेश नहीं है। अरे बेटा तुम कैसे कहते हैं, मैं कैसे आदेश हूं, राम तो सत्र के पक्ष में है, धर्म के पक्ष में है, उसको अधर्म कैसे करा। पहले बात वो मान को जाए तब फिर देखिए। कौशल्या के पास में गए रात में 12 बजे रात में, मैया को भी सब जग रही हूँ तो बेटा मैं जागरूक मुझे नींद नहीं आती, तू कैसे आया। तो मैया को एक बात कहा, तुम अपने बेटे को राम को यह कह दो कि ध्यान हो और आगे ले बेटा मैं कैसे हूं, कैसे नहीं, मैं अभ्रम की बात कर रहा हूं, मैं गलत बात कर रहा हूं, मैं बात को ठीक करता है, तेरी बात को कौन काट सकता है, तुम ठीक कर रहा है, ये तो जरूर होना चाहिए, तुम्हारे तरफ से ये ठीक है, किंतु वो भी तो पिता मैया दोनों की बात मानकर के आया है, मैं बाकी यदि केवल कह नहीं करती तो मैं कह देती, किंतु उसमें महाराज का तुम्हारे पिता का भी कुछ राय थी, इसलिए मैं नहीं कर सकती, क्योंकि पिता का वचन निर्माण करके गया है, उसका पालन करने के लिए मैं कैसे कहूँ कि उस धर्म को छोड़कर के असत्य पथ पर आए, वहां से भी बात भी नहीं, रात में ही सुनैने के पास में है, सुनैना जी पिताजी बोल लेकर के बड़ी दर्द हो गई थी, ये सन्यासी का वेश बना करके चीज पहन करके और राम के साथ में पैदल घूम रही है कि ये बकोड़े का राक्षस से भरा हुआ है और उसने जाना कैसे दिए कैसे रहेगी, इसलिए वो भी नहीं सो पाई, देखा उनके घर में दिया कम तीन सीमा रहा वहां पर उनके घर उनके पैरों में भी गए, बोले कि भैया कुछ भी करी भैया महाराज जनक आए हैं, जनक के आदेश को वो कभी भी उल्लंघन नहीं कर, इसलिए आप जनक जी से कहते हो तुम्हारी बात नहीं है कि वो आदेश है कि वो अयोध्या को लौट जाए, अच्छा तो ठीक मैं तो चाहती हूँ, तो मैं जनक अपने पति से मैं कौन सवेरे मैं बताऊंगा और वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, राम को कहेंगे आदेश देंगे, ठीक भर भी गए, फिर रात सवेरा हो गया नहीं सो सके, आज सभा बुलाई गई स्नान करने के बाद में सभी लोग वट वृक्ष के नीचे मिल रहे, महाराज जनक एक तरफ में बैठे बल उन्हीं पर विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी और ऋषि लोग उनके सामने बैठे, सामने जैसे रामचंद्र जी आए हैं तो सामने लोग बैठे, एक तरफ में अयोध्या वासी माताएं तपैतिक भक्त उसके सामने आगे बैठे और एक तरफ में और सब बैठे, मुनियों का समाज जो है बड़ा ही सुंदर समाज है, सब लोगों ने कहा यह भाग महाराज जनक के ऊपर दे दिया जाता है, आज के सभापति की सभा का हो महाराज जनक, ये ब्रह्म ज्ञानी है तत्व ज्ञानी है, संसार में इनका कोई मतलब नहीं है, कहते आज ये जो ऐसा निर्णय लेंगे आज दोनों पक्षों को मानना, राम ने कहा कि ये हमारा पिता तुल्य है गुरु तुल्य है और ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मों की अनुभूति करने वाले हैं, इसलिए ये जैसा कहेंगे मैं बिना कुछ विचार किए हुए इनके शरीर की इनके आदेश को ठीक परामर्श को बैठा करूंगा, भरत की तरफ ने जनक जी ने देखा तुम्हारी क्या राय है, आप हमारे गुरु हैं हमारे पिता हैं और आप जैसा कहेंगे मैं आपके वचन को मानने के लिए आदेश को मानने के लिए बाध्य हूं, जरूर सबसे सामने सबसे क्या करता हूं आप जैसा कहेंगे मैं मानूं, ठीक उन्होंने ध्यान लगाया महाराज जनक उनके गुरु शंकर जी हैं वैष्णवानंद यथा शंभो शंभो नाथ मुनि को शंकर जी का ध्यान लगाया, आप जैसा कहेंगे वैसा कहूंगा जैसी प्रेरणा है और उनको प्रणाम करके बोले देखो भाई मैं अपने निर्णय पर पहुंचा हूं, ये भक्त का प्रेम अबाध समुद्र है, अबाध समुद्र प्रेम और दूसरी तरफ राम का राम जो है परम सत्यभावी धर्म के सुमेरु पर्वत
मर जाता है
धर्म या धर्म की मर्यादा के सुमेरु पर्वत है, भरत का प्रेम नियम मर्यादा कुछ नहीं जानता, वो केवल प्रेम प्रेम जानता है, राम के प्रति उनका अबाध प्रेम है जिसमें राम के धर्म की मर्यादा डूब जाएगी, मर्यादा इसमें डूब जाएगी, किंतु डूब करके भी उसकी प्रेम की एक मर्यादा होती है। वो प्रेम की मर्यादा क्या है? वो अटल, उसमें भी कुछ मर्यादा है। आज मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं, विचार करके भक्ति की हुई, इसके प्रेम की जीत हुई, और राम की मर्यादा उस प्रेम के पोषण में असीम अभाव समुद्र में ये टूट गया, इसलिए भक्ति में जीत करता हूं। अब भक्त जैसा कहे वैसे राम को करना है। अब सुन करके बड़े लोग सब प्रसन्न हो गए, जो भक्त को यही कहेंगे कि अब राजा अपनी और चलिए, किंतु फिर जब सब लोग प्रसन्न हो रहे थे